डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट लिटरेचर, व्याख्यान 33, 1 जॉन 2024। डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, जोहानाइन एपिस्टल्स पर व्याख्यान 33। ठीक है, बस कुछ घोषणाएं। अनुस्मारक के रूप में व्याख्यान और कक्षा चर्चा के संबंध में यह इस कक्षा का आपका अंतिम सप्ताह है। हालांकि अगले सप्ताह एक परीक्षा होगी, जैसा कि मैंने कहा, वह शायद सोमवार होगा, लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगा। तो यह आपकी औपचारिक कक्षाओं का अंतिम सप्ताह होगा। और फिर जैसा कि मैंने कहा, सोमवार को, क्षमा करें, परीक्षा संख्या 4 होगी। अभी दूसरी बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि गुरुवार की रात परीक्षा संख्या 4 के लिए अगला अतिरिक्त क्रेडिट समीक्षा सत्र होगा। मैं आपको इसके बारे में निश्चित रूप से बताऊंगा, लेकिन अभी यह गुरुवार रात 8 बजे जैसा लग रहा है। और उम्मीद है फिर से इस कमरे में 4 परीक्षाओं के लिए आपका अंतिम अतिरिक्त क्रेडिट होगा, और फिर परीक्षा सोमवार को होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस सप्ताह हमारे पास कवर करने के लिए काफी कुछ है। मैं आज उन पत्रों के समूह पर अपनी चर्चा समाप्त करना चाहता हूं जिन पर हम विचार कर रहे हैं और जिन्हें हम सामान्य पत्रियां कहते हैं, और फिर बुधवार और शुक्रवार को उस पुस्तक में थोड़ा समय बिताने के लिए रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ना चाहते हैं। और तब तक ऐसा ही रहेगा। वास्तव में मैं अंतिम परीक्षा के समय पर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर हम नए नियम पर आगे बढ़ेंगे। पिता, उस दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया, फिर से खूबसूरत मौसम के लिए। आपकी वफादारी और हमारे लिए आपके प्रावधान के लिए धन्यवाद। पिता, हम आपको उस आशा के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपका पुत्र यीशु मसीह हमें विश्व परिदृश्य पर होने वाली उन सभी घटनाओं के बीच देता है जो कभी कभी भ्रम या प्रश्न या आश्चर्य पैदा कर सकती हैं, कि हमारे पास एक आशा और एक सुरक्षित आशा है आपके पुत्र यीशु मसीह में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हम उन दस्तावेजों की जांच और उन पर ध्यान देकर उस वास्तविकता का सामना कर रहे हैं जो इसकी गवाही देते हैं, तो हमें उस आशा की याद दिलाई जाएगी और विशेष रूप से उसे जीने की जरूरत की याद दिलाई जाएगी। उसे जीने की सख्त जरूरत है वर्तमान में बाहर। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। ठीक है, हम दस्तावेजों के एक संग्रह को देख रहे हैं जिन्हें हमने सामान्य पत्रियों का लेबल दिया है, या उनका दूसरा नाम कैथोलिक पत्रिया है। कैथोलिक से हमारा वह मतलब नहीं है जो हम अक्सर समझते हैं। फिर कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ लेख पत्रियों को कैथोलिक धर्मपत्रों के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन हम रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा लिखे गए या उससे जुड़े पत्रों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस शब्द का जिक्र कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल सार्वभौमिक या आम तौर पर चर्च को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। इब्रानियों की किताब से शुरुआत करते हुए हमने उन लेखों के चयन पर गौर करना शुरू कर दिया है जिन्हें फिर सामान्य पत्रियों का लेबल दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि पॉल के पत्रों के बिल्कुल विपरीत, जो सभी विशिष्ट चर्चों और या व्यक्तियों को संबोधित हैं, इब्रानियों से शुरू होने वाले पत्र, हालांकि इब्रानियों को अधिक विशिष्ट दर्शकों को संबोधित किया जा सकता था और शायद, लेकिन इसमें नाम का अभाव है। इब्रानियों हमें यह नहीं बताती कि इसे किसने लिखा या इसे किसे संबोधित किया गया था, लेकिन अन्य सभी पत्र, विशेष रूप से जेम्स और एक पीटर, संकेत करते हैं कि वे ईसाइयों के लिए लिखे गए हैं जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान में व्यक्तियों या व्यक्तियों के विपरीत व्यापक रूप से और व्यापक रूप से बिखरे हुए हैं। अतः इसलिए यह शब्द सामान्य पत्र या कैथोलिक पत्र है। जिस दस्तावेज को हम देखना चाहते हैं या जिस दस्तावेज को हम आज देखना चाहते हैं, वह उस परंपरा में जारी है। और वास्तव में उम्मीद है आज हम लेखों के उस समूह का निष्कर्ष निकालेंगे जिन्हें हम सामान्य या कैथोलिक पत्र कहते हैं, और ये पहले, दूसरे और तीसरे जॉन के पत्र हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले मेरे पास आपके लिए थोड़ा व्यायाम है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, रहस्योद्घाटन के बारे में बात करने से पहले अंतिम खंड किताबों का आखिरी समूह, जिस पर मैं सामान्य या कैथोलिक पत्रों के इस व्यापक संग्रह के भीतर विचार करना चाहता हूँ, फिर से पत्र जो ईसाइयों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए लिखे गए थे, या कम से कम उनमें से कुछ पाठकों का कोई विशेष संकेत नहीं है। हम आज देखेंगे कि वास्तव में जिन दो पत्रों को हम आज बहुत बहुत जल्दी से देखने जा रहे हैं, वे बहुत बहुत छोटे हैं। शायद उन्हें सामान्य पत्र के रूप में लेबल करना सबसे अच्छा नहीं है, क्योंकि वे एक विशिष्ट चर्च को संबोधित प्रतीत होते हैं, हालांकि पत्र में हमें यह बिल्कुल नहीं बताया गया है कि वह चर्च कहाँ है। इसलिए बहुत कुछ है जिसे हमें छोड़ना होगा, और हम इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि ये पत्र किसे लिखे गए थे, वे क्यों लिखे गए थे, और चर्च कहाँ स्थित होगा या क्या समस्या थी वे संबोधित कर रहे थे आदि। इसलिए हम कुछ संभावनाएं प्रस्तावित करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी मानेंगे कि वास्तव में निश्चित होने के लिए बहुत सारे सबूत नहीं हैं। लेकिन मैं जिन पत्रों के समूह को देखना चाहता हूँ वे हैं पहला, दूसरा और तीसरा जॉन। हम पहले ही जूड को दूसरे पत्रस, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे जॉन के संबंध में देख चुके हैं। अब पहली चीज जो आपने नोटिस की है, प्रथम जॉन से शुरू करते हुए, लेकिन एक अर्थ में ये तीनों इब्रानियों की पुस्तक की तरह हैं। प्रथम जॉन में लेखकत्व का कोई संकेत नहीं है। वास्तव में यह एक पत्र की तरह शुरू भी नहीं होता है, जिससे कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या यह वास्तव में एक पत्र है, हालांकि हम इसे एक जॉन का पत्र कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यह एक पत्र की तरह शुरू नहीं होता है। इसका कोई संकेत नहीं है कि दुनिया में इसे किसने लिखा है। यह कहते हुए सीधे पहली कविता में कूदता है, हम आपको घोषणा करते हैं कि शुरुआत से क्या था, हमने क्या सुना है, हमने अपनी आंखों से क्या देखा है, हमने क्या देखा और अपने हाथों से क्या छुआ है, के संबंध में जीवन का वचन, हमने जो कुछ देखा और सुना है वह तुम्हें बताते हैं कि तुम हमारे साथ सहभागी हो जाओ। तो इस तरह प्रथम जॉन की पुस्तक शुरू होती है। इसका कोई संकेत नहीं कि इसे किसने लिखा, कोई संकेत नहीं कि यह किस समस्या का समाधान कर रहा था या पत्र कहां भेजा गया था। इसलिए यदि आप एक डाक वाहक थे और यदि यह वास्तव में एक पत्र था और आपको इसे वितरित करने के लिए कहा गया था, तो आपके लिए वास्तव में कठिन समय होगा, क्योंकि इसका कोई संकेत नहीं है कि इसे कहां जाना चाहिए। लेकिन पत्र को ध्यान से पढ़कर और चर्च की परंपरा पर ध्यान देकर हम शायद एक संभावित तस्वीर तैयार कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चर्च का इतिहास और चर्च के इतिहास से मेरा तात्पर्य मुख्य रूप से चर्च के पिताओं, उन नेताओं और नए नियम के लेखन के बाद की दो या तीन चार शताब्दियों के लेखकों से है। सभी का दावा है कि पहला और दूसरा और तीसरा जॉन ये पत्र जॉन द्वारा लिखे गए थे। हालांकि इस बात पर विवाद है कि कौन सा जॉन है। ऐसे कई संभावित जॉन थे जिन्होंने यह पत्र लिखा होगा, और कुछ व्यक्ति जो लेखक के रूप में जॉन के बारे में बात करते हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि यह कौन सा जॉन है। लेकिन एक बहुत मजबूत राय है कि जॉन यीशु मसीह के प्रेरित इस पत्र के लेखक थे। हालांकि फिर भी पत्र हमें नहीं बताता है, और हम इसे निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से प्रारंभिक चर्च के पिताओं, बहुत बहुत प्रारंभिक ईसाइयों की गवाही पर निर्भर हैं। लेकिन एक और कारण है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जॉन ने इसे लिखा है, वे शब्द हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं, हम आपको बताते हैं कि शुरुआत से क्या था, हमने क्या सुना है, हमने अपनी आंखों से क्या देखा है, हमने क्या देखा है और अपने हाथों से क्या छुआ है। कुछ लोग सुझाव देंगे कि केवल वही व्यक्ति जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व के साथ उपस्थित था, ऐसा कुछ लिख सकता था। और बहुत से लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रारंभिक चर्च गवाही के अनुसार जॉन, संभवतः प्रेरित जॉन, सबसे अधिक संभावित उम्मीदवार होंगे। इसलिए मैं इसे वहीं छोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेरित जॉन इस पुस्तक के लेखकत्व के लिए उतना ही अच्छा उम्मीदवार है। लेकिन फिर से, जैसा कि आप जानते हैं, लेबल 1, 2 और 3 जॉन इन पत्रों के लेखक द्वारा नहीं लिखे गए थे। इन्हें प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा एक संकेत के रूप में वहां रखा गया था कि वे सोचते थे कि पत्र का लेखक कौन था। अब जहां तक पाठकों की बात है, जब आप पहले, दूसरे और तीसरे जॉन और जॉन के गॉस्पेल की तुलना करते हैं, तो कई लोगों ने वास्तव में ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही दिलचस्प परिदृश्य का निर्माण किया है कि ये सभी अक्षर एक साथ कैसे फिट होते हैं। उदाहरण के लिए, और यह दिलचस्प है कि जब आप पहला जॉन पढ़ते हैं, तो इसमें जॉन के सुसमाचार चौथे सुसमाचार के साथ कई समानताएं होती हैं, और हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन कुछ लोग सुझाव देंगे कि जॉन का गॉस्पेल जॉन चौथा है। यह जॉन नाम का जिक्र नहीं है, बल्कि चौथा गॉस्पेल जॉन है। कुछ का सुझाव है कि जॉन का गॉस्पेल जिन चीजों को संबोधित कर रहा था, उनमें से एक ग्नोस्टिक प्रकार का था, विधर्म या झूठी शिक्षा। याद रखें, इस कक्षा के शुरुआती दिनों में हमने विभिन्न धार्मिक विकल्पों के बारे में बहुत सारी बातें की, उनमें से एक था ज्ञानवाद। अब यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञानवाद दूसरी शताब्दी तक धर्म की पूर्ण विकसित शिक्षा के रूप में विकसित नहीं हुआ था। शताब्दी के अंत में, जब जॉन और प्रथम, द्वितीय और तृतीय जॉन का सुसमाचार कथित तौर पर लिखा गया था, के अंत में सदी में, कई लोगों को लगता है कि ज्ञानवाद के सभी तत्व पहले से ही विकसित हो रहे थे और बाद में बड़े पैमाने पर जी के साथ इस पूर्ण विकसित ज्ञानवाद के रूप में उभरेंगे। लेकिन एक छोटा जी ज्ञानवाद पहली शताब्दी में पहले से ही मौजूद रहा होगा। हमने देखा कि ज्ञानवाद की एक पहचान आध्यात्मिकता पर जोर देना, भौतिक शरीर से मुक्ति, भौतिक दुनिया की कैद से मुक्ति पर जोर देना था। मुक्ति एक गुप्त ज्ञान के कब्जे से आती है, जो केवल कुछ विशिष्ट लोगों के लिए उपलब्ध है, बाकी सभी के लिए नहीं। और इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि जॉन का सुसमाचार आंशिक रूप से इस तरह की शिक्षा को संबोधित कर रहा होगा। यदि यह अभी तक दूसरी शताब्दी का पूर्ण विकसित ज्ञानवाद नहीं था, तो यह पहली शताब्दी के अंत में पहले से ही प्रारंभिक रूप में मौजूद हो सकता था। फिर से, आध्यात्मिक पर इस जोर के साथ, मुक्ति आध्यात्मिक है, एक अपमान भौतिक, भौतिक शरीर से मुक्ति, और आध्यात्मिक अस्तित्व मुक्ति, जिसमें एक गुप्त ज्ञान शामिल था जो केवल अभिजात वर्ग, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए उपलब्ध था। अब जहां पहला जॉन आता है, जैसा कि कई लोग महसूस करते हैं कि पहला जॉन उन लोगों में से कुछ को संबोधित किया गया था जिन्होंने इस गूढ़ ज्ञानवादी प्रकार के विधर्म का समर्थन किया था। प्रथम जॉन के लिखे जाने तक वे पहले ही चर्च में घुसपैठ कर चुके थे और अब वे चर्च छोड़ रहे हैं। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये विधर्मी या ये झूठे शिक्षक, ये ज्ञानी प्रकार के शिक्षक अब चर्च छोड़ चुके हैं, और अब हम देखेंगे कि एक जॉन की व्याख्या के लिए इसका क्या मतलब है। लेकिन अब वे पीछे रह गए हैं, ईसाइयों का एक समूह जिसे अब जॉन पत्र में संबोधित करता है, जिसे हम प्रथम जॉन के रूप में जानते हैं। लेकिन ये शिक्षक, जिन्हें जॉन के सुसमाचार का खंडन कर रहे थे, उन्होंने अब चर्च में घुसपैठ कर ली है और अब इसे छोड़ रहे हैं। वे इसमें सफल हो रहे हैं और ईसाइयों के एक अल्पसंख्यक को पीछे छोड़ रहे हैं, जिन्हें अब जॉन प्रथम जॉन के साथ संबोधित करते हैं। दो जॉन। फिर कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग जो चर्च छोड़ चुके हैं, अब चर्च पर बाहर से हमला कर रहे हैं, इसलिए ये वही ज्ञानी प्रकार के शिक्षक हैं जो अध्यात्मवाद, आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर देते हैं और इस गुप्त ज्ञान के कब्जे पर जोर देते हैं। अब वे हमला कर रहे हैं बाहर से जॉन का चर्च और फिर अंत में तीसरा जॉन एक ऐसी स्थिति को प्रतिबिंबित कर सकता है जहां चर्च अब वास्तव में इन झूठे शिक्षकों द्वारा कब्जा किए जाने के खतरे में है। और कुछ आगे भी बढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य अध्याय दो को शामिल करेंगे जहां सबसे पहला चर्च जॉन का है। प्रकाशित वाक्य में पते इफिसुस के चर्च के हैं जिन्होंने अपना प्यार खो दिया है और कुछ ने सुझाव दिया है कि रहस्योद्घाटन भी इससे आगे एक और चरण का सुझाव देगा। इसलिए कुछ लोग इन पत्रों में ऐतिहासिक रूप से इस संबंध में एक प्रकार की प्रगति देखते हैं कि चर्च इस शिक्षण के संदर्भ में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अब मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे इस पर थोड़ा संदेह है। ऐसा लगता है कि यह बहुत सारे सबूतों के आधार पर एक संपूर्ण परिदृश्य का निर्माण कर रहा है। वास्तव में जैसा कि हम देखने जा रहे हैं, तीन जॉन में कोई सबूत नहीं है कि झूठे शिक्षकों के साथ कोई समस्या है। हो सकता है, लेकिन वास्तव में कोई सबूत नहीं है और इनके लिए सबसे अच्छा मामला बनाया जा सकता है। हम देखेंगे कि एक जॉन वास्तव में ईसाइयों के एक समूह के एक चर्च को संबोधित कर रहा है जो अब इन झूठे शिक्षकों के चले जाने के बाद पीछे रह गए हैं, और अब जॉन ईसाइयों के इस छोटे समूह को संबोधित करते हैं जो अब पीछे रह गए हैं, और दो जॉन चर्च को चेतावनी देने की स्थिति को संबोधित करता प्रतीत होता है कि इन झूठे शिक्षकों को शायद इस गूढ़ज्ञानवादी प्रकार की शिक्षा देने की अनुमति न दी जाए, उन्हें चर्च में आने की अनुमति न दी जाए। लेकिन इसके अलावा यह योजना शायद कुछ ज्यादा ही कटी और सूखी हुई है। वास्तव में यह बताना वास्तव में असंभव है कि यह आदेश सही क्रम है या नहीं। याद रखें, नया नियम कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं है। हम निश्चित नहीं हो सकते कि पहला जॉन पहले लिखा गया था और फिर दूसरा जॉन उसके बाद और फिर तीसरा जॉन उसी क्रम में लिखा गया था। यह हो सकता था, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। कम से कम हम यह कह सकते हैं कि एक जॉन एक चर्च को संबोधित करता है जहां ये झूठे शिक्षक इसे छोड़कर ईसाइयों के एक समूह को पीछे छोड़ गए हैं, और दूसरा जॉन बाहर से चर्च में आने की कोशिश करने वाले झूठे शिक्षकों को संबोधित करता है, लेकिन यह कहना असंभव है कि वे उस क्रम में लिखे गए थे या नहीं। इसलिए मैं यह नहीं मानूंगा कि यह सही क्रम है जिसमें ये किताबें लिखी गई थीं, लेकिन हम उनका अनुसरण उसी क्रम में करेंगे जिस क्रम में वे नए नियम में दिखाई देती हैं। अब जहां तक विशेष रूप से प्रथम जॉन की पृष्ठभूमि की बात है, जैसा कि मैंने कहा, प्रथम जॉन जिस समस्या को संबोधित कर रहे थे वह अलगाववादी या ये झूठी शिक्षाएं हैं जो चर्च से अलग हो गए हैं या छोड़ चुके हैं। और फिर एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। यदि ये झूठी शिक्षाएं, यदि वे अभी तक दूसरी शताब्दी के पूर्ण विकसित ज्ञानशास्त्र नहीं हैं, लेकिन यदि उनमें पहले से ही ज्ञानशास्त्र की प्रवृत्ति है, तो फिर से मुक्ति के आध्यात्मिक होने पर जोर देना, भौतिक को नकारना, कब्जे पर जोर देना गुप्त ज्ञान, उस ज्ञान पर कब्जा जो कुछ विशिष्ट लोगों का होता है जिनके पास यह ज्ञान होता है, इस पर जोर देने से अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन झूठे शिक्षकों ने चर्च छोड़ दिया है, वे इससे अलग हो गए हैं, और जो उन्होंने पीछे छोड़ा है वह ईसाइयों का एक समूह है जो अब मूल रूप से, हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से दुर्व्यवहार महसूस करते हैं, या वे हैं आध्यात्मिक रूप से पीटा गया और घायल कर दिया गया क्योंकि झूठे शिक्षकों ने आध्यात्मिक पर जोर देने और गुप्त ज्ञान के कब्जे पर जोर देने के कारण अब इस समूह को संदेह करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे वास्तव में भगवान के लोग हैं या नहीं। झूठे शिक्षकों ने उनसे परमेश्वर के लोगों के रूप में उनकी स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है। आखिरकार यदि वे इस झूठी शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं और यदि वे उन विशिष्ट लोगों में से नहीं हैं जिनके पास यह ज्ञान है, तो अब वे बाहरी हैं। और एक बार जब झूठे शिक्षक चर्च छोड़ देते हैं, तो वे संकटग्रस्त ईसाइयों के इस छोटे समूह को पीछे छोड़ देते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वे वास्तव में भगवान के लोग हैं या नहीं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जॉन संबोधित कर रहा है। जॉन का मुख्य उद्देश्य एक जॉन के अध्याय 5 और श्लोक 13 में पाया जा सकता है, जहां वह कहता है, मैं ये बातें तुम्हें लिखता हूँ जो के नाम पर विश्वास करते हैं परमेश्वर का पुत्र, ताकि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है। मूलतः यही कारण है कि जॉन लिखते हैं। इसे एक साथ परिदृश्य में रखने के लिए, फिर से उन लोगों के लिए जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर संदेह करने के लिए प्रलोभित हुए हैं, क्योंकि फिर से इन झूठे शिक्षकों ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से पीटा और घायल कर दिया है और उनकी स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। अब जॉन इस तथ्य के बारे में पाठकों को आश्वस्त करने के लिए लिखते हैं कि वास्तव में उनके पास अनंत जीवन है, कि वे परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। वह इन शिक्षकों द्वारा उन्हें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने और अब चर्च छोड़ने और सफल होने के मद्देनजर उनकी आध्यात्मिक स्थिति को आश्वस्त करने के लिए लिखते हैं। अब जिस तरह से जॉन इस पत्र में ऐसा करता है, आपके नोट्स के अगले भाग में आप देखेंगे कि वास्तव में तीन परीक्षण हैं। एक जॉन की योजना तीन परीक्षणों के इर्द गिर्द घूमती है। तो वे कैसे जानते हैं, वे कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि उनके पास अनंत जीवन है? वे कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि वे और ये झूठे शिक्षक जो चले गए हैं नहीं, वे कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि वे परमेश्वर के सच्चे लोग हैं? वे अपनी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में कैसे निश्चित हो सकते हैं? जॉन मूल रूप से उन्हें तीन परीक्षण देता है, और वह अपने पत्र में क्या करता है, वह इन परीक्षणों को लगभग 2 या 3 अलग अलग समयों से गुजरता है, जैसे हमने जेम्स को विश्वास और धीरज और ज्ञान और भाषण आदि के विषयों के माध्यम से चक्र करते देखा। एक जॉन 3 परीक्षण लेता है, जिनका उपयोग पाठक प्रदर्शित करने और अपनी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति के बारे में आश्वस्त होने के लिए कर सकते हैं। और सबसे पहला पत्र जो 2-3 बार घूम जाता है, वह प्रेम का है। अर्थात यदि वे प्रदर्शित करते हैं कि उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो उन्हें आश्वस्त किया जा सकता है कि वे ईश्वर के सच्चे लोग हैं और उन्हें उनकी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में आश्वस्त किया जा सकता है। तो वह परीक्षण नंबर 1 है। दूसरी परीक्षा मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं कि वे क्या, कैसे रहे होंगे या झूठे शिक्षक क्यों होंगे, वे क्या कर रहे थे जिससे शायद उन्हें मसीह की आज्ञाओं के प्रति उनकी आज्ञाकारिता पर प्रश्नचिन्ह लग गया होगा, क्या झूठे शिक्षक गैर विरोधी थे या जो कुछ भी। लेकिन मुद्दा यह है कि जॉन उन्हें आश्वासन देता है कि यदि वे मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और मसीह की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो उन्हें आश्वासन दिया जा सकता है कि वे भगवान के बच्चे हैं। तीसरा यह स्वीकारोक्ति है कि यीशु मसीह देह में आए हैं, और जॉन इसे कई बार दोहराता है। यदि आप स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह देह में आए हैं, या वह झूठे शिक्षकों की निंदा इसलिए करते हैं कि वे यह स्वीकार नहीं करते हैं कि मसीह देह में आए हैं, आपको क्या लगता है वह इस पर जोर क्यों देता है? वह क्यों नहीं कहता, यदि आप मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, या यदि आप मानते हैं कि यीशु मसीहा है, दाऊद का पुत्र है, या वह भाषा का उपयोग क्यों नहीं करता है? उदाहरण के लिए पॉल यीशु के बारे में बात करता है अदृश्य ईश्वर की छवि के रूप में, समस्त सृष्टि का पहलौठा। वह उन्हें क्यों नहीं बताता, यदि आप मानते हैं कि यीशु अदृश्य ईश्वर है, अदृश्य ईश्वर की छवि है, या यदि आप मानते हैं कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, तो आपको क्यों लगता है कि वह कहता है, यदि आप मानते हैं कि यीशु आए हैं मांस? शायद इसे वापस पुराने नियम की पूर्ति से जोड़ने के लिए, जिसे फिर से यह शिक्षा नकारती और अस्वीकार करती रही होगी। मैं बस इसलिए कहने जा रहा था क्योंकि वे सिर्फ इन लोगों से प्रभावित हुए हैं। ठीक है। हाँ, यदि वह पुराने नियम की पृष्ठभूमि के साथ है तो शायद यदि वह उन ईसाइयों को संबोधित कर रहा है जो इस गूढ़ज्ञानवादी शिक्षा से प्रभावित हैं, जो भौतिक से इनकार करते हैं, शायद उन्होंने यीशु को एक इंसान होने से इनकार कर दिया होगा, तो उनके लिए इस बात पर फिर से जोर देना आवश्यक है। संभवतः जॉन के पाठकों के बीच यह प्रश्न नहीं उठाया गया होगा कि यीशु परमेश्वर थे। हो सकता है झूठे शिक्षकों के प्रकाश में उन्हें यह संदेह करने का प्रलोभन दिया गया हो कि क्या यीशु वास्तव में एक इंसान थे। याद रखें, हमने डोसेटिज्म के बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि हमने इस कक्षा के शुरुआती दिनों में डोसेटिज्म के बारे में बात की थी। बाद में चर्च में डोसेटिज्म एक विधर्म था जिसने यीशु की मानवता को नकार दिया। इसमें कहा गया यीशु केवल मनुष्य प्रतीत होते थे। यह ग्रीक शब्द डोकेओ से आया है जिसका अर्थ है सोचना या प्रतीत होना, और उससे हमें डोसेटिज्म प्राप्त होता है, अर्थात यीशु केवल एक मनुष्य प्रतीत होते थे। वह केवल मनुष्य प्रतीत होता था, और ये शिक्षक यदि उनके पास मजबूत ज्ञानवादी प्रवृत्ति होती तो शायद उन्होंने सिखाया होता कि यीशु वास्तव में एक इंसान नहीं थे, या आध्यात्मिक और भौतिक के बीच उनके मजबूत अंतर के कारण उनकी मानवता से इनकार कर दिया था। याद रखें, मोक्ष में भौतिक शरीर और भौतिक संसार से पलायन शामिल है। तो अब इसके आलोक में जॉन मसीह की मानवता को पुनः स्थापित करना आवश्यक समझता है। इसलिए वे यह स्वीकार करके जान सकते हैं कि वे वास्तव में ईश्वर की संतान हैं, उन झूठे शिक्षकों के विपरीत जो अभी अभी उन्हें छोड़कर गए हैं। वे अब जान सकते हैं कि वे वास्तव में ईश्वर की संतान हैं यदि वे स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में देह में आए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इस बात से इनकार करने की जरूरत है कि वह भगवान भी है और वह देवता भी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि उन्हें उसकी मानवता से भी जुड़े रहने और उस पर जोर देने की जरूरत है। तो ये तीन परीक्षण एक तरह से, जैसा कि मैंने कहा, पूरी किताब में दो या तीन बार चक्रित होते हैं। मैं जॉन के उत्तर के रूप में शायद तीन बार सोचता हूँ, फिर से हम कैसे जानते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन है? हम कैसे जाने कि हम सचमुच परमेश्वर की संतान हैं? आध्यात्मिक दुर्व्यवहार के प्रकाश में और अब इस तथ्य के प्रकाश में कि हमें इन झूठे शिक्षकों द्वारा आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाई गई है और घायल किया गया है, जिन्होंने हमें छोड़ दिया है और हम एक प्रकार से अल्पसंख्यक संकटग्रस्त ईसाई समूह हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हम वास्तव में भगवान के लोग हैं? तो यूहन्ना कहता है, ठीक है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, यदि तुम यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हो और यदि तुम अंगीकार करते हो तो यीशु मसीह देह में आए हैं। अब एक जॉन उन किताबों में से एक है जो मेरे लिए सबसे अधिक में से एक है, उनमें सबसे अधिक भ्रमित करने वाले कथनों का एक सेट है। पहला कथनों का पहला समूह एक जॉन एक में पाया जाता है और विशेष रूप से श्लोक तीन में। मैं श्लोक तीन में दिए गए कथनों को पढ़ूंगा। जॉन यही कहता है, मुझे क्षमा करें, अध्याय तीन श्लोक छह नौ और दस। सुनो वह क्या कहता है, कोई भी जो उसमें बना रहता है उसका जिक्र करते हुए यीशु या भगवान का उल्लेख नहीं करेगा। जब मैं इन छंदों को पढ़ता हूँ, कोई भी जो उसमें यीशु में रहता है पाप नहीं करता। जो कोई यीशु में बना रहता है वह पाप नहीं करता। पाप करने वाले किसी भी व्यक्ति ने न तो उसे देखा है और न ही उसे जाना है। यह काफी सशक्त भाषा है। पद नौ सुनो, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे पाप नहीं करते क्योंकि परमेश्वर का बीज उनमें निवास करता है। जन्म भाषा और जैविक भाषा का उपयोग करते हुए प्रतीकात्मक रूप से वह कहते हैं, अब क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान का बीज आप में रहता है, आप पाप नहीं कर सकते। यह कहता है कि वे पाप नहीं कर सकते क्योंकि वे भगवान से पैदा हुए हैं। श्लोक 11, मुझे क्षमा करें। श्लोक 10, भगवान के बच्चे और शैतान के बच्चे इस तरह से प्रकट होते हैं। वे सभी जो सही काम नहीं करते परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, नहीं वे जो अपने भाइयों और बहनों से प्रेम नहीं करते। अब यह बिल्कुल निरपेक्ष और चौंकाने वाली भाषा है। जॉन तुरंत बाहर आता है और कहता है, यदि कोई पाप करता है, यदि आप भगवान के बच्चे होने का दावा करते हैं, तो आप पाप नहीं करते हैं। और जो कोई पाप करता है, वह परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि यदि आप ईश्वर से पैदा हुए हैं, यदि ईश्वर का बीज आप में निवास करता है, फिर से रूपक रूप से, तो आप पाप नहीं करेंगे। वास्तव में वह जिस भाषा का उपयोग करता है, आप पाप नहीं कर सकते। यह काफी चौंकाने वाली भाषा है। हमें उससे क्या बनाना चाहिए? फिर जॉन भी योग्य नहीं है। वह यह नहीं कहते कि क्या आप कभी कभी पाप करते हैं, या यदि आप इसे पाप करने की आदत नहीं बनाते हैं, यदि पाप करना आपकी जीवन शैली नहीं है, तो वह सीधे सामने आते हैं और कहते हैं, यदि आप भगवान के बच्चे होने का दावा करते हैं, तो आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं गुनाह करने के लिए। और जो कोई पाप करता है, वह परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ। अब इसे अध्याय 1 और श्लोक 8 और 10 में जॉन के कुछ अन्य कथनों के साथ जोड़ा जाए। यहाँ अध्याय 1 श्लोक 8 है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम खुद को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। पद 10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि हम इसका अर्थ कैसे समझें? मेरे लिए क्या यह बिल्कुल विरोधाभास जैसा नहीं लगता? मेरा मतलब है, मजबूत भाषा में जॉन कहते हैं, फिर से सरलता से, यदि आप भगवान के बच्चे होने का दावा करते हैं, तो आप पाप करने में सक्षम नहीं हैं, और जो कोई भी पाप करता है, वह भगवान से पैदा नहीं हुआ है। फिर वह पलट जाता है और ऐसी बातें कहता है, लेकिन यदि आप कहते हैं कि आपके अंदर पाप नहीं है, तो आप झूठे हैं, और यदि आप दावा करते हैं कि आपने कभी पाप नहीं किया है, तो आप भगवान को भी झूठा करार देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक विरोधाभास है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह आखिरकार परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि जॉन स्पष्ट रूप से स्वयं का खंडन करता है। एक ओर वह कहते हैं कि ईसाई पाप नहीं कर सकते और पाप नहीं करते, फिर वह पलट कर कहता है कि नहीं, यदि तुम ऐसा करते हो, यदि तुम कहते हो कि तुम नहीं करते हो, तो तुम झूठे हो और तुम भगवान को झूठा बना देते हो। या हम इसके साथ क्या करते हैं? क्या इसे समझने का कोई और तरीका है? मेरा मतलब है, क्या जॉन इतना मूर्ख है कि वह कुछ लिखेगा और कुछ पन्नों के बाद वह बिल्कुल विपरीत कुछ लिखेगा? या क्या यह समझने का कोई और तरीका है कि यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, मेरा मतलब है, सबसे पहले आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश को अनुभवात्मक रूप से कोई समस्या नहीं है। विशेष रूप से मेरा मतलब है, हम में से अधिकांश एक ईसाई के पाप से सहमत होंगे। यह दावा करना कि हम अनंत काल के इस ओर पाप नहीं करते हैं, यह दावा करना कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है और हमने कभी पाप नहीं किया है, या किसी तरह हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हम कभी भी काम या विचार में पाप नहीं करेंगे, बस एक असंभवता है। और हम जॉन से सहमत होंगे। हाँ, जो कोई कहता है कि वे पाप नहीं कर सकते, वह ईश्वर को बना देता है, वह बस स्वयं को धोखा देता है और ईश्वर को झूठा बना देता है। लेकिन क्या मुझे लगता है कि यह पहला थोड़ा अधिक कठिन है? आपको क्या लगता है जॉन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है? वह ऐसी बात क्यों करेगा? और वैसे अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो आप शायद इन दोनों के बीच आने वाली आयत को पहचान लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जॉन कह रहा है, ओह, पाप करना ठीक है। आगे बढ़ो। यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप वैसे भी पाप करते हैं। लेकिन इसके बीच में यही आपको वह श्लोक मिलता है। परंतु यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो मसीह विश्वास योग्य है और हमें हमारे पापों से क्षमा करता है और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करता है। इसलिए ईसाई जब वे पाप करते हैं तब भी वे ईश्वर और क्षमा की ओर मुड़ते हैं। वे अपने पापों को स्वीकार करने और क्षमा पाने के लिए पिता की ओर मुड़ते हैं। तो फिर हम शायद इसके साथ संघर्ष नहीं करते हैं। यह पहला है जो शायद हमें थोड़ा अजीब लगता है। हम इन दो कठोर बयानों की तुलना को कैसे समझा सकते हैं? जॉन को यह कहने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है कि ईसाई पाप नहीं करते? यदि आप भगवान से पैदा हुए हैं तो आप पाप करने में सक्षम नहीं हैं। जो कोई पाप करता है वह परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। पाप में लगे रहना। दिलचस्प बात यह है कि यदि आपके पास NIV है, यदि आपके पास नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है, तो यह वास्तव में इन छंदों की व्याख्या पाप करना जारी रखें या पाप करना जारी रखें शब्द के साथ करता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप भगवान से पैदा हुए हैं तो आप पाप करने में सक्षम नहीं हैं। NIV कुछ ऐसा कहेगा जैसे आप पाप जारी रखने में सक्षम नहीं हैं या आप पाप में बने रहने में सक्षम नहीं हैं। या जो लोग ईश्वर से पैदा हुए हैं या यदि आप पाप करते रहते हैं, यदि आप पाप में ही बने रहते हैं तो आप ईश्वर से पैदा नहीं हुए हैं। तो NIV इससे सहमत होगा। नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की जॉन यहाँ जिस बारे में बात कर रहा है वह पाप को जारी रख रहा है और इसे एक आदत और जीवन शैली बना रहा है। तो यह होगा कि ईसाई पाप करते हैं, हर कोई इसे पहचानता है, लेकिन ईसाई पाप नहीं करते हैं, यानी उन्हें जीवन शैली के रूप में पाप का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उन्हें इस पर अड़े नहीं रहना चाहिए और इसे जारी रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जॉन का बयान उससे भी ज्यादा मजबूत है। मुझे लगता है कि वह कह रहा है कि ईसाई पाप नहीं करते हैं। आपको अब तक यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि यह वह तनाव है जो अभी, लेकिन अभी नहीं, दूसरे भेष में छिपा हुआ है। पहले से ही यह है कि ईसाई पाप नहीं करते हैं। यह अब के गुण से है, यह वही भाषा है, यह पॉल के कहने जैसा है कि आप पाप के लिए मर गए हैं। अब तुम इसमें कैसे रह सकते हो? ईसाई पाप नहीं करते। फिर भी अभी तक वास्तविकता यह नहीं है कि ईसाई अभी भी पाप करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जॉन अभी भी उसी तनाव को प्रतिबिंबित कर रहा है, किसी अन्य रूप में या किसी अन्य रूप में। हाँ, ईसाई पाप नहीं करते। फिर से मैं पॉल की भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन यह पॉल के यह कहने के समान होगा कि हम मसीह के साथ पाप करने के लिए मर गए हैं। हम जीवन की नवीनता में मसीह के साथ बड़े हुए हैं। ईसाई पाप नहीं करते। ईश्वर से जन्म लेने का दावा करना और फिर भी पाप होना असंगत है। फिर भी यह अभी तक वास्तविकता नहीं है कि ईसाई अभी भी पाप करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह इसे रखने का एक और तरीका है। यह सांकेतिक है और यह अनिवार्यता को दर्शाता है। अब इसे देखने का दूसरा तरीका भी, मैं यह भी सोचता हूँ, क्योंकि यह एक जॉन के भीतर और नए नियम के भीतर कार्य करता है, मुझे लगता है कि इन दोनों को अलग-अलग समय पर सुनने की जरूरत है। जब हम यह सोचने के लिए प्रलोभित होते हैं कि पाप बिल्कुल सामान्य है, और जब हमारा रवैया ऐसा होता है तो ठीक है, ईसाई पाप करने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर सकता या किसी भी तरह से पाप नहीं कर सकता। या जब हम मसीह में अपने विश्वास या मसीह की मृत्यु को पाप के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, तब हमें इसे सुनने की जरूरत है। नहीं, ईसाई पाप के बारे में मौलिक रूप से कुछ गलत और असंगत है। फिर भी जब हम पवित्र जीवन जीने के अपने प्रयासों से निराश हो जाते हैं, जब शायद हम इन ईसाइयों की तरह झूठे शिक्षकों द्वारा प्रलोभित होते हैं, जब हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर संदेह करने के लिए प्रलोभित होते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या हमने कुछ ऐसा किया है जो अलग करता है हमें मसीह के प्रेम से, तो मुझे लगता है कि हमें इसे सुनने की जरूरत है। हाँ, ईसाई पाप करते हैं, लेकिन साथ ही वे क्षमा के लिए पिता के पास जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमें अपने जीवन में अलग अलग समय पर इन दोनों को सुनने की जरूरत है। चाहे हम पाप के साथ सहज हों और इसे नजरअंदाज करने के लिए प्रलोभित हों और सोचते हों कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पहले सुनने की जरूरत है। जब हम इससे टूट जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं और अपनी स्थिति पर संदेह करते हैं और सोचते हैं कि क्या हमने कुछ ऐसा किया है जिसे भगवान कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते और माफ नहीं कर सकते, तब हम और पाप पर काबू पाने की कोशिश में हमारी हताशा, तब हमें इसकी आवश्यकता है। दूसरा संदेश भी सुनिए। तो इस तरह मैं तनाव को समझता हूँ, और निश्चित रूप से यह सही है कि जॉन, मेरा मतलब है, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत होऊंगा कि ईसाई पाप में बने नहीं रहते हैं और लगातार पाप करते हैं, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि जॉन इससे थोड़ा अधिक कुछ कह रहा है जो सांकेतिक अनिवार्यता या के बीच तनाव को दर्शाता है। अभी जो पहले से ही सत्य है, लेकिन जो अभी तक नहीं है, वह अब एक जॉन में फिर से उभर रहा है। ठीक है, बस जल्दी से, हाँ, कौन सा किसका है? उफ, ठीक है, हाँ, पहला वाला पहले से ही प्रतिबिंबित करेगा। तो फिर से अगर मैं पॉल की भाषा का उपयोग कर सकता हूँ, तो वह कहता है हम पहले ही पाप के लिए मर चुके हैं। यह फिर से एक बहुत ही कठोर बयान है। तुम पाप के लिए मर चुके हो, अब तुम उसमें कैसे रह सकते हो? मैं रोमियो 6 को उद्धृत कर रहा हूँ, और जॉन के कहने का तरीका यह है कि यदि आप भगवान से पैदा हुए हैं तो आप पाप नहीं करते हैं। और फिर पॉल कहता है आप पाप के लिए मर चुके हैं, आप अब और इसमें नहीं रह सकते, वह पहले से ही है। दूसरे शब्दों में, अब मसीह से संबंधित होने के कारण, इस पुनर्जन्म के कारण जिसके बारे में जॉन बात करता है, कुछ निरपेक्षता घटित हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं है, क्योंकि हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हम पूर्णता तक नहीं पहुंचे हैं, मसीह का दूसरा आगमन, और यही कारण है कि पॉल आगे बढ़ सकता है, और इसलिए आपको अभी भी अपने नश्वर शरीर में पाप को मौत के घाट उतारने की जरूरत है। तुम्हें अभी भी स्वयं को धार्मिकता के साधन के रूप में अर्पित करने की आवश्यकता है। तो यह अभी तक नहीं, अनिवार्य है। वह समझ में आया था। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, दो जॉन। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि इसका लेखक कौन है, हालांकि फिर से एक बहुत मजबूत ईसाई गवाह, एक प्रारंभिक ईसाई गवाह इसे जॉन के साथ जोड़ता है, और संभवतः यह वही लेखक है जिसे हम एक जॉन कहते हैं, लेकिन एक काफी मजबूत प्रारंभिक ईसाई गवाही इसे प्रेरित जॉन के साथ जोड़ती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दो जॉन में ध्यान दें कि लेखक खुद को कैसे संदर्भित करता है। दो जॉन में पहली कविता में बुजुर्ग वास्तव में एक अक्षर की तरह शुरू होता है, लेकिन वह हमें अपना नाम नहीं बताता है। वह कहता है, बुजुर्ग लेखक स्वयं को इसी प्रकार संदर्भित करता है। वह बुजुर्ग निर्वाचित महिला और उसके बच्चों से कहता है। अब वह निर्वाचित महिला कौन है? कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इसका शाब्दिक अर्थ एक ऐसी महिला से है जो एक चर्च की मुखिया थी। दूसरी संभावना, और मैंने इस पर पर्याप्त काम नहीं किया है कि मैं वास्तव में यह निर्धारित कर सकूं कि मैं क्या सोचता हूं, लेकिन दूसरी संभावना यह है कि निर्वाचित महिला चर्च के लिए ही एक रूपक है। उसी तरह जैसे चर्च कहीं और पॉल कहीं और चर्च को संदर्भित करने के लिए महिला छवि का उपयोग करेगा। चर्च ईसा मसीह की दुल्हन है। रहस्योद्घाटन चर्च को ईश्वर के पूर्ण लोग मसीह की दुल्हन कहता है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ चुनी गई महिला चर्च के लिए सिर्फ रूपक है, जैसे चर्च को ईसा मसीह की दुल्हन कहना। लेकिन अन्य लोग सोचते हैं कि यह अधिक शाब्दिक है, कि यह एक वास्तविक महिला को संदर्भित करता है जो इस घरेलू चर्च की नेता है। लेकिन किसी भी मामले में सबसे अधिक संभावना है कि जॉन घरेलू चर्चों के एक छोटे दल को
संबोधित कर रहे हैं। संभवतः फिर से दूसरी बात जिसका मैंने वन जॉन के साथ उल्लेख नहीं किया, लेकिन दूसरी बात जो प्रारंभिक ईसाई परंपरा करती है, वह इन तीन अक्षरों या कम से कम उनमें से कुछ को इफिसस शहर के साथ जोड़ती है। और इसलिए वन यूहन्ना और टू यूहन्ना इफिसुस शहर में किसी चर्च या घरेलू चर्च को संबोधित कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी हम निश्चित नहीं हो सकते, क्योंकि पत्र स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। यह सिर्फ निर्वाचित महिला और उसके बच्चों के लिए कहता है। प्राप्तकर्ताओं के बारे में हम बस इतना ही जानते हैं, हम वास्तव में और कुछ नहीं जानते। परंतु टू यूहन्ना फिर बड़े द्वारा लिखा गया है। यह शब्द फिर से, यदि यह प्रेरित यूहन्ना है तो यह वह शब्द है जिसके द्वारा वह स्वयं को संदर्भित करता है और वह चुनी हुई महिला को संबोधित करता है, चाहे वह शाब्दिक महिला हो जो चर्च की मुखिया हो या रूपक रूप से चर्च का जिक्र करती हो। ऐसा प्रतीत होता है कि फिर से झूठे शिक्षक, शायद गूढ़ ज्ञानवादी प्रकार के प्रभाव वाले, अब इस गृह चर्च में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए जॉन उन्हें चेतावनी देने जा रहा है कि वे इस झूठी शिक्षा को अनुमति न दें, शायद उसी तरह की शिक्षा जिसने वन जॉन में चर्च को धमकी दी थी और अब चली गई है। अब टू जॉन चर्च को चेतावनी दे रहे होंगे कि इस प्रकार के झूठे शिक्षकों को अंदर न आने दें। लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि टू जॉन वन जॉन के बाद लिखा गया था या उससे पहले, यह बताना मुश्किल है। लेकिन यह पृष्ठभूमि हमें एक उलझाने वाले श्लोक को समझने में मदद करती है। यह टू यूहन्ना का पद 9 और 10 है। टू और थ्री जॉन के साथ जूड और फिलेमोन जैसी कुछ अन्य लघु पुस्तकों की तरह अध्याय नहीं है, लेकिन यहाँ टू यूहन्ना 9 और 10 है। हर कोई जो मसीह की शिक्षा का पालन नहीं करता है बल्कि उससे आगे निकल जाता है, उसकी परमेश्वर के साथ संगति नहीं है। जो कोई शिक्षा पर कायम रहता है उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। जो कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा न दे, उसका अपने घर में स्वागत न करना, क्योंकि स्वागत करना ऐसे व्यक्ति के बुरे कार्यों में भाग लेना है। अब मैं इसे सामने लाने का कारण यह है कि मैं वास्तव में उस परंपरा में पलाभा हूँ जिसमें कहा गया है, आप इसे अब उतना नहीं देखते हैं मुझे नहीं लगता, लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे पास हमेशा अलग अलग धर्म होते थे, चाहे यहोवा के साक्षी हों या मोर्मन और अन्य, हमारे दरवाजे पर आते थे और बात करना चाहते थे। और इन छंदों के आधार पर मुझे हमेशा सिखाया गया कि तुम्हें अनुमति नहीं है, तुम्हें उन्हें अपने घर में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जॉन कहते हैं उन्हें अपने घर में भी मत आने दो। ऐसा करना उनके शिक्षण को बढ़ावा देना या उसके साथ संगति करना है। और इसलिए यह ठीक है यदि आप दरवाजे पर खड़े होकर उनसे बात करते हैं, लेकिन आपको उन्हें अपने घर में आने नहीं देना चाहिए। और इस तरह मेरा पालन पोषण हुआ। लेकिन जब आप इसे बैकग्राउंड में सेट करते हैं, तो आपको दो बातें समझनी होंगी। नंबर एक यह है कि पहली शताब्दी में अधिकांश चर्च घरों में छोटे घर के चर्चों में मिलते थे, इसलिए यहाँ घर के संदर्भ का मेरे निजी घर से कोई लेना देना नहीं है। इसका प्राथमिक संदर्भ उस स्थान से है जहाँ चर्च की बैठक होती है। यह तब होता है जब चर्च की बैठक हो रही होती है। तो पहचानने वाली पहली बात यह है कि यहाँ घर का तात्पर्य गृह चर्च से है। पहचानने योग्य दूसरी बात यह है कि पहली शताब्दी में भ्रमणशील प्रचारकों और शिक्षकों का होना बहुत आम था, जो विभिन्न सभाओं में अपनी शिक्षाएं फैलाते थे और फिर उन्हें एक साथ रखने के लिए। जॉन यहाँ जिस बारे में बात कर रहा है वह घरेलू चर्च के लिए है कि वह किसी को अपने चर्च में आने की अनुमति दे और अपनी पूजा सेवाओं के हिस्से के रूप में, अपने समुदाय के हिस्से के रूप में उन्हें अंदर आने की अनुमति दे और उन्हें यह सिखाए, उनके शिक्षण और उपदेश का आधार। जॉन इसी के खिलाफ बोल रहा है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किसी को अपने घर में आने देते हैं या नहीं। इसका सब कुछ इस बात से जुड़ा है कि पहली सदी में चर्च वास्तव में इस तरह की बातें सिखाने वाले इन झूठे शिक्षकों का समर्थन करता था और उन्हें एक मंच देता था। इसलिए जब पॉल फिर से कहता है उन्हें अपने घर में न आने दें, तो मेरी व्याख्या यह है कि जब ये भ्रमणशील प्रचारक इस गूढ़ ज्ञानवादी प्रकार की शिक्षा देते हुए आते हैं, यदि ऐसा है जब वे आते हैं, तो उन्हें अपने घर के चर्च में आमंत्रित न करें। उन्हें अपने घर की कलीसिया में, जब वह पूजा के लिए इकट्ठा होती है, अपने अंदर आधार रखने और आधार स्थापित करने और अपनी शिक्षा फैलाने की अनुमति न दें। मैं जॉन को इसी बात का संदर्भ देता हुआ समझता हूँ। तो फिर संदेश को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, जॉन इन झूठे शिक्षकों को अपने बीच में स्वीकार करने के खिलाफ मंडली को चेतावनी देता है। वह बस उनसे धार्मिक और नैतिक रूप से पवित्रता बनाए रखने का आह्वान करता है और इन यात्रा करने वाले शिक्षकों को अनुमति नहीं देता है जो संभवतः वन जॉन में संबोधित उसी प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, अब उन्हें अपने चर्च में अनुमति नहीं देते हैं। इससे पहले कि मैं थ्री जॉन पर बहुत तेजी से नजर डालूं, अब तक कोई प्रश्न है? और फिर से मैं दोहराऊंगा, यह निश्चित नहीं है कि टू जॉन वन जॉन के बाद आए या नहीं। एक तरह से झूठे शिक्षकों को बाहर जाते हुए और अब चर्च में बाहर से हमला करते हुए वापस आने की कोशिश करते हुए देखना अच्छा होगा, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है। थ्री जॉन वह पुस्तक है जिसे, फिर से जब आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, तो वास्तव में कोई संकेत नहीं मिलता है कि चर्च को धमकी देने वाली किसी प्रकार की झूठी शिक्षा थी। यह हो सकता है, लेकिन बताने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। थ्री यूहन्ना न केवल इतना छोटा पत्र है, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार की विचलित शिक्षा का कोई संदर्भ नहीं है जो चर्च या चर्च के अंदर धमकी दे रहा हो। इसलिए मैं थ्री जॉन को अपने स्वयं के पत्र के रूप में देखने के लिए प्रलोभित हूँ। यह आवश्यक रूप से उसी समस्या से संबंधित नहीं है जो वन या टू जॉन में पाई जाती है। यह शायद अपने आप में लिखा गया एक बिल्कुल अलग पत्र है। लेकिन थ्री यूहन्ना का संबंध दियुत्रिफेस नाम के एक व्यक्ति से है। एक अच्छा नाम जिसे आप किसी दिन अपने बच्चों के नाम रख सकते हैं। डायोट्रेफेस नाम का एक व्यक्ति चर्च के बीच में एक शक्ति आधार स्थापित करने और अनुयायियों को इकट्ठा करने की कोशिश करके चर्च को विभाजित कर रहा है, अर्थात मूल रूप से निम्नलिखित स्थापित करने का प्रयास करके चर्च को विभाजित करने या विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि फिर भी पत्र हमें यह नहीं बताता कि यह किसी प्रकार की झूठी शिक्षा पर आधारित है या क्या, यह बस ऐसा नहीं कहता है। तो मूल रूप से वन यूहन्ना का संदेश यह है कि यूहन्ना उन्हें यह बताने के लिए लिखता है कि दियुत्रिफिस से कैसे निपटना है, और इसमें कुछ बहुत कठोर शब्द हैं। उन्हें बस उसके साथ नहीं रहना है, अर्थात चर्च विभाजनकारी उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग सत्ता का आधार स्थापित करने या चर्च में विभाजन पैदा करने का प्रयास करेंगे। 3 जॉन मूलतः इसी बारे में है। और फिर मुझे नहीं पता कि यह अन्य 2 से पहले लिखा गया था या बाद में। यह बताना असंभव है कि इसमें कोई गलत शिक्षा शामिल थी या नहीं, लेकिन फिर से 3 जॉन सिर्फ अपना पत्र हो सकता है, किसी भी झूठी शिक्षा से संबंधित नहीं है या 1 या 2 जॉन के समान समस्याओं से संबंधित नहीं है। हाँ, यह संभव है। हम 1 जॉन के लिए 2 और 3 जॉन कवर लेटर हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तावित सिद्धांत है। पुनः 2 और 3 जॉन इतने संक्षिप्त और गूढ़ हैं कि विशेष रूप से वे क्या संबोधित कर रहे थे और 1 जॉन के संबंध में उन्होंने कैसे कार्य किया, इसके बारे में बहुत कुछ बताना वास्तव में कठिन है। यह एक संभावना है, ठीक है। 1, 2 और 3 जॉन के बारे में कोई अन्य प्रश्न? फिर से आप देख सकते हैं, एक अर्थ में 2 और 3 जॉन को सामान्य अक्षरों के रूप में लेबल करना सबसे अच्छा नहीं है, क्योंकि वे एक विशिष्ट चर्च को संबोधित प्रतीत होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पत्र हमें यह नहीं बताते कि कौन सा चर्च या घरेलू चर्चों का समूह क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम कम से कम 2 जॉन और 3 जॉन से यह बताने में सक्षम हैं कि वे एक विशिष्ट चर्च को संबोधित थे। फिर एक मजबूत प्रारंभिक चर्च परंपरा इसे इफिसस से जोड़ती है, लेकिन पत्र स्वयं उस पर मौन है। लेकिन फिर यह एक पत्र पढ़ने का हिस्सा है। लेखक और पाठक, जैसा कि हमने कहा, यह फोन पर हुई बातचीत का आधा हिस्सा सुनने जैसा है। लेखक और पाठक जानते हैं कि क्या हो रहा है। पत्र के लेखक को उन्हें वह सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है जो उन्हें जानना है, क्योंकि वे जानते हैं, और वे कुछ ऐसी जानकारी साझा करते हैं जिसके बारे में आप और मैं नहीं जानते हैं। इसलिए कभी कभी जब हम इस तरह के पत्र पढ़ते हैं, विशेष रूप से 2 या 3 जॉन जैसे छोटे पत्र पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में लेखक कौन है, पाठक कौन है, वे कहाँ हैं, क्या समस्या है, क्या वे सामना कर रहे थे, और हम केवल पाठ पर ही अधिक निर्भर हैं। इसलिए एक परिदृश्य का निर्माण करने और फिर उसे पाठ पर थोपने का खतरा हमेशा बना रहता है, बजाय इसके कि पाठ को स्वयं बोलने दिया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि हम इसे कैसे पढ़ते और समझते हैं। बुधवार और शुक्रवार फिर हम अपना शेष ध्यान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर लगाएंगे। तो आपका दिन शुभ हो और मैं आपसे बुधवार को मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन है, जोहानाइन एपिस्टल्स पर व्याख्यान 33।